प्रस्तुत है नाटक नीली गाड़ी। इसके लेखक और निर्देशक हैं माइकल हॉजेस। ले बेटा, और थोड़ा सा खा ले, मैंने बहुत अच्छा बनाया है आज।
बस करो मम्मी, मेरा तो पेट भर गया है।
अरे कुछ भी तो नहीं खाया तूने?
ओफो मम्मी, पेट मेरा है या आपका, क्यों जबरदस्ती कर रही हो?
इसलिए कि तू जैसा मेरा एक ही तो बेटा है।
एक ही बेटा है तो खिला खिला कर उसकी जान निकाल दो।
हट, ऐसी कैसी बात करता है बेटा तू।
सही तो कह रहा हूँ मम्मी, अगर बच्चे को पेट भरकर खिलाने का इतना ही शौक है तो मेरे एक से दो भाई और होना था।
तुम्हारे एक दो और भाई की कमी मैं अकेली जो पूरा कर रही हूँ अंकुर भैया।
लो आ गई दादी माँ।
देखो मम्मी, ये मुझे फिर छेड़ रहा है।
अब जब तुम्हारी शक्ल ही दादी जैसी है तो मैं क्या करूं?
कहां दादी माँ की शक्ल और कहां मेरी।
मगर तू कुछ भी बोल दिशा, तेरी नाक तो बिल्कुल दादी जैसी ही है।
कोई नहीं, दादी की नाक तो कितनी लंबी है, तोते की जैसी, और मेरी नाक तो दादी की नाक से बहुत ही छोटी है।
मतलब तू ये मानती है कि तेरी नाक छोटी है, जरा सी है?
अरे क्या बेटा तू भी बोलता रहता है।
छोटी होगी तेरी नाक, मेरी नाक तो अच्छी खासी है।
अभी तो खुद ही कह रही थी कि मेरी नाक छोटी है।
क्या मम्मी? अरे अंकुर भैया, क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि मैं सिर्फ दादी से अपनी नाक की तुलना कर रही थी।
समझा बेटा अंकुर।
छोड़ो मम्मी, इसके खुद के तो कुछ समझ में आता नहीं, ये छुटकी मुझे क्या समझाएगी।
कुछ भी हो, तुमसे तो ज्यादा समझ रखती हूँ, क्यों मम्मी?
अब बोल बेटा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि तेरी समझदानी मेरी समझदानी से बड़ी है।
समझदानी? ये समझदानी क्या होती है मम्मी?
ये तो तू अंकुर से ही पूछ बेटा।
अरे बड़ी समझदार बनती है और समझदानी का मतलब नहीं जानती? देख पगली, जैसे खानदानी, साबुनदानी और मच्छरदानी होती है, वैसे ही समझदानी भी होती है। लेकिन अब इसमें कुछ फर्क है। जैसे खानदानी में खानदान और साबुदानी में साबुन होता है, मगर मच्छरदानी में मच्छर बिल्कुल भी नहीं होते। बस ऐसे ही इसका समझदानी में भी बिल्कुल समझ नहीं है।
देखा? अच्छा देखा मम्मी इसको, और आप हैं कि इसी का साथ दिए जा रही हैं।
देखो भाई, मैं तो तुम दोनों के ही साथ हूँ, न इधर न उधर।
मगर फिर भी मम्मी, आप हर बात में अंकुर भैया का ही सपोर्ट करती हैं।
अब जरा ये भी बता दो दिशा महारानी कि मम्मी ने कब और किस बात पर मुझे सपोर्ट किया है।
किस बात पर? हाँ, उस दिन भी पापा टूर पर गए हुए थे और तुमको जाना था अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर, तो तुमने कैसे मम्मी को पटाकर उनसे पिकनिक की परमिशन ले ली थी।
अच्छा? अरे तो इतनी सी बात के लिए मम्मी को क्या पटाना, मम्मी तो वैसे भी पटी पटाई है, क्यों मम्मी?
चुप, बदमाश कहीं का।
मगर मम्मी ने तुम्हें परमिशन ऐसे ही नहीं दी थी, तुम्हें परमिशन इस बात पर दी थी कि ये बात पापा को पता नहीं चलनी चाहिए।
तो क्या दिशा जी, अब तो रात गई बात गई।
रात भले ही चले जाए अंकुर भैया, मगर बात अभी बाकी है। ये बात अब भी पापा की टूर से आने के बाद में उन्हें बताई जा सकती है।
मम्मी ये लड़की तो लगता है हमारा कबाड़ा ही करके रख देगी। देखो दिशा, तुम तो बहुत समझदार लड़की हो, क्या तुम ऐसा करोगी?
क्यों, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम मुझे ना समझ कह रहे थे कि मेरी समझदारी में समझ नाम की चीज ही नहीं है, वगैरह वगैरह।
वो तो मैं यूं ही मजाक कर रहा था।
मगर अंकुर भैया, मजाक कभी कभी करने वाले पर भारी भी पड़ जाता है।
तुम सही कहती हो दादी माँ।
देखो मम्मी, ये भैया फिर शुरू हो रहे हैं।
अरे वो तो मेरे मुंह से निकल गया, मैं तो तुम्हें बोलना थोड़ी चाहता था दादी माँ।
तुम ऐसे नहीं मानोगे, पापा से मुझे बताना ही पड़ेगा।
चलो मैंने सरेंडर कर दिया है, अब नहीं कहूँगा दादी माँ।
कह लो बार बार बहाने से, सब समझती हूँ मैं तुम्हें, तुम्हें मम्मी ने बहुत सिर जो चढ़ा रखा है।
कैसी बात करती है बेटा तू भी।
हाँ दिशा, मेरी बहना रानी कैसी बात करती हो।
तुम्हारे लाड़ का एक और सबूत सुनो, ये जिस मोटरसाइकिल पे तुम दंदनाते हुए घूमते हो, वह भी मम्मी ने तुम्हारे एक ही बार कहने पर कितनी आसानी से तुम्हें दिला दी।
क्यों, वाहन सुख तो तुम्हें तुम्हारी स्कूटी भी दे रही है।
वो भी कई बार मम्मी से मांगने पर और पापा से एक ही बार मांगने पर मिली है।
अच्छा,
तो अब तो बात बराबर हो गई ना, अगर मैं मम्मी का सिर चढ़ा हूँ तो तुम पापा की सिर चढ़ी हो, है ना दादी माँ?
मम्मी
चलो छोड़ो, तुम दोनों ही हम दोनों के बहुत प्यारे हो, न एक कम न दूसरा ज्यादा।
मगर मम्मी, दादी माँ चिढ़ाने की भी हद होती है। ठीक है, अब मैं भी इसे केवल दादा कहकर ही चिढ़ाऊंगी।
मगर दादा की शक्ल मुझसे मिलती ही कहाँ है, मेरी शक्ल तो मम्मी से मिलती है, मम्मी से।
अच्छा अच्छा, चलो अब तुम दोनों के कॉलेज का टाइम हो गया है।
ठीक है मम्मी, मैं निकलता हूँ। बाय बाय दादी माँ।
बाय।
दिशा बेटी, तुझे कॉलेज नहीं जाना है क्या?
जाना तो है मम्मी, लेकिन मैं एक पीरियड लेट जाऊंगी, क्योंकि कल भी अस्थाना मैडम नहीं आई थी और आज भी नहीं आएंगी।
अच्छा ठीक है बेटा, टाइम से निकल जाना। अंकुर, ए अंकुर, क्या बात है बेटा? मैं कल से देख रही हूँ तू कुछ बुझा सा और चुपचाप है, बात क्या हुई है?
कुछ नहीं मम्मी।
कुछ नहीं? अरे तो फिर यूं मुंह लटका कर क्यों बैठा हुआ है तू?
कहा ना, कुछ भी तो नहीं।
तू क्या समझता है, मैं तेरी माँ हूँ, और क्या मैं इतना भी नहीं समझ सकती कि मेरे बेटे को कोई ना कोई परेशानी जरूर है? वरना मेरा बेटा इतना चुपचाप बैठने वालों में से कभी नहीं है।
क्या मम्मी?
बेटा, हमेशा खुश रहने वाले जब उदास होते हैं ना, तो भीड़ हो या तन्हाई, अलग ही नजर आ जाते हैं। उनका चेहरा, उनके हाव भाव, ये सब उनके मन में चल रही उथल पुथल की चुगली कर ही देते हैं बेटा। चल बता क्या बात है।
मम्मी मैं बताऊं अंकुर भैया को क्या हुआ है?
हाँ बता क्या हुआ है।
मुझे सब पता है मम्मी, कि क्या बात है।
अरे तो बता ना, बताती क्यों नहीं आप?
बता दूं अंकुर भैया।
देख दिशा, पहले ही मेरा दिमाग खराब है, तू और खराब ना कर।
तू बता बेटी, क्या बात है, क्या हुआ है इसके साथ में?
मम्मी, अंकुर भैया का कॉलेज में झगड़ा हो गया है।
क्या कह रही है तू? हे भगवान, किससे हुआ है झगड़ा? बेटा तुझे कोई चोट तो नहीं आई है ना कहीं पे?
नहीं मम्मी, मुझे तो कोई चोट नहीं आई, मगर अब उस मयंक के बच्चे को चोट जरूर लगेगी।
ये तू क्या कह रहा है बेटा, जो हो गया उसको धूल में डाल दे।
नहीं मम्मी, अब धूल बात पर नहीं बल्कि मयंक पर डाली जाएगी।
बात खत्म करने की कोशिश कर बेटा, क्यों बेवजह झगड़ा बढ़ाता है?
बेवजह? क्या कहा आपने, बेवजह? मैं बेवजह बात बढ़ा रहा हूँ? और वो मयंक, वो जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है।
क्या किया है बेटा मयंक ने, और ये मयंक है कौन?
ये मयंक साइंस फैकल्टी का है, खुद भी आवारा है और आवारा लड़कों के साथ ही रहता है कॉलेज में भी।
ऐसे लड़कों से दूर ही रहा कर बेटा तू, इनकी अपनी तो कोई इज्जत होती नहीं है और दूसरों की इज्जत उतारने में लगे रहते हैं।
अब उसकी इज्जत मैं नीलाम करूंगा, देखना मम्मी।
मगर तेरा उससे झगड़ा आखिर हुआ क्यों, क्या क्या हुआ था सब कुछ?
शिल्पा के पीछे।
शिल्पा, ये कौन है?
शिल्पा अंकुर भैया की क्लास में ही पढ़ती है, अंकुर भैया उसे अपनी बहन मानते हैं।
फिर झगड़ा किस बात का हुआ?
परसों की बात है।
अरे मैं बताता हूँ, मयंक वैसे ही पूरे कॉलेज में बदनाम है मम्मी, वो आए दिन कॉलेज में लड़कियों को छेड़ते रहता है।
तो छेड़ने देना बेटा, ये देखना प्रोफेसर और प्रिंसिपल का काम है।
मैं भी परसों के पहले तक यही मानता और सोचता था, मगर परसों से मैंने अपना ये विचार बदल दिया।
क्यों बेटा, परसों ऐसी कौन सी बात हो गई?
परसों ही तो भैया का मयंक से झगड़ा हो गया।
किस बात पर?
उस कमबख्त मयंक ने परसों कॉलेज के बस स्टॉप पर शिल्पा का हाथ पकड़ लिया था।
हे भगवान, इतनी गुंडागर्दी!
इस बात पर अंकुर भैया ने मयंक को दो तीन तमाचे मार दिए।
वो तो मेरे दोस्तों ने मुझे पकड़ लिया था, वरना मैं उसकी सारी दादागिरी निकाल देता।
मगर बेटा तुझे किसी के झगड़े में पड़ने की क्या जरूरत थी, ये शिल्पा के घर वालों का मामला था ना?
माना कि शिल्पा के घर वालों का मामला था, मगर उस समय तो उसके घर का वहाँ कोई नहीं था ना मम्मी, फिर वह मुझे भाई कहती और मैं उसे बहना मानता हूँ। अगर कोई दिशा के साथ इस तरह की बदतमीजी करेगा तो क्या मैं देखता रहूंगा?
अच्छा चल, तूने उसे थप्पड़ मार दिए, उसे सबक सिखा दिया, बस इतना काफी है उसके लिए अब?
नहीं मम्मी, इतना काफी नहीं उसके लिए, अभी उसे कुछ और डोज देना बाकी है, तभी सीधा होगा वो।
छोड़ भी दे बेटा, अब मामला यहीं खत्म कर।
मम्मी ठीक कहती है अंकुर भैया, मयंक अच्छा लड़का नहीं है।
वही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ इससे, कि इस तरह के लड़कों के साथ बहुत ज्यादा बिगाड़ने से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है हमें, जमाना वैसे ही खराब है।
जमाना खराब है मम्मी, मयंक जैसे लड़कों के कारण, और इस जमाने को अच्छा बनाने के लिए मयंक जैसों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है।
रहने दे बेटा, फिर वो तुझसे बदला लेगा, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता किसी चीज में।
हाँ मम्मी, कॉलेज में सब कहते हैं कि मयंक की गुंडों के साथ दोस्ती है।
अगर मयंक की गुंडों से दोस्ती है तो मेरी भी दूसरे गुंडों से जान पहचान है।
मगर उसके तो दोस्त है ना गुंडे?
गुंडे? गुंडों के सिवा किसी के दोस्त नहीं हुआ करते मम्मी, या तो वे गुंडे दोस्त होते हैं या फिर पैसों के।
मगर तुम तो गुंडे नहीं हो भैया, तुम उनके दोस्त कैसे हो सकते
और
हो?
गुंडों की दोस्ती कभी करना भी मत तू बेटा।
गुंडों की दोस्ती कौन करने जा रहा है मम्मी, मैं तो सिर्फ कांटे को कांटे से निकालने की फिराक में हूँ।
मगर अब तुम करोगे क्या भैया?
मैं अब जो भी करूँगा वो देखने वाली चीज होगी, बताने वाली नहीं।
फिर भी तू करेगा क्या बेटा? क्या फिर वो तुझसे बदला नहीं निकालेगा बाद में?
मैंने उसे थप्पड़ मारे हैं तो क्या अब भी वो उन थप्पड़ों का बदला नहीं लेगा क्या?
आशा, आजकल तुम्हारा साहबजादा अंकुर की पढ़ाई कैसी चल रही है?
अपने अंकुर की पढ़ाई तो अच्छी चलती है, क्यों क्या हुआ है?
क्या हुआ ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, मैं तो अपना काम और टूर वगैरह में फंसा रहता हूँ।
आप अपना सारा ध्यान अपने काम में ही लगाइए, घर की फिक्र मुझ पे छोड़ दीजिए आप।
घर की फिक्र तुम पर क्या छोड़ दूँ, तुम्हें पता है परसों अंकुर रामगंज के गुंडों से क्यों मिलने गया था?
ये किसने कहा आपसे?
कल शर्मा जी मुझे बता रहे थे कि उनके बेटे ने अंकुर को रामगंज के गुंडों से बात करते हुए देखा था। क्या बात है आशा, किस चक्कर में है आजकल तुम्हारा लाडला?
क्या बताऊं मैं आप?
फिर भी बताना तो पड़ेगा तुम्हें।
कॉलेज में अंकुर की एक मुंह भोली बहन का हाथ एक गुंडे टाइप के लड़के ने पकड़ लिया था, तो अंकुर ने उसे दो तीन थप्पड़ जड़ दिए। ये बात दिशा और अंकुर मुझे बता चुके हैं।
फिर अब क्या वो लड़का मयंक से उसके थप्पड़ों का बदला चुकाना चाहता है?
नहीं, उसने मुझसे कहा था कि वो लड़का उससे बदला ले, उसके पहले ही वो गुंडों से मिलके उसके हाथ पैर तुड़वा देगा, शायद इसीलिए वो गुंडों से मिला होगा। मगर आप दिशा से पूछ लीजिए, मैंने उसे ऐसा करने से बहुत मना किया था।
बहुत खूब आशा, बहुत खूब। ये सब बच्चों के आपसी झगड़े होते हैं, इनमें पढ़ने वाला मूर्ख होता है। अरे इस उम्र में तो ये सब होता ही रहता है, इन सबको तूल देने की क्या जरूरत है?
अरे मैंने भी उसके भविष्य का वास्ता देकर उसको ये सब कुछ समझाया था।
मगर शायद तुम्हारे समझाने में कोई कमी रह गई थी, तभी तो वो गुंडों के बीच बैठा उनसे बतिया रहा था।
आने दीजिए उसे, आज मैं खबर लेती हूँ।
तुम्हें तो उसे पहले ही सख्ती से रोकना था। खैर तुम्ही ने उसे सर भी चढ़ा है तो उसका नतीजा भी भुगतो, मगर हाँ उसे एक बात बता देना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिर पड़ता है। बेहतर तो यही है कि उसने उस लड़के को दो चार थप्पड़ मार लिए हैं तो अब उसे माफ करके बात खत्म कर दे, वरना परिणाम भुगतने के लिए तुम भी तैयार रहना।
मगर अंकुर को डर है कि कहीं वो लड़का अंकुर से बदला नहीं ले। अब
ये तो झगड़ा करने से पहले सोचना था, अब सोचने से क्या फायदा? देखो आशा, मैं टूर पर जाने से पहले तुम्हें समझा कर गया था कि अंकुर को समझा देना, मगर उसकी ये हालत देखकर लगता नहीं कि तुमने उसे समझाया होगा।
मेरे समझाने के बावजूद वो गुंडों से मयंक की पिटाई की बात कर चुका था।
फिर खुद अंकुर की हालत पिटाई से कैसे हो गई? उस लड़के ने ही अंकुर को कैसे पिटवा दिया?
नहीं, अंकुर की पिटाई अंकुर की ही गलती का नतीजा है सब।
अंकुर की पिटाई अंकुर की ही गलती का नतीजा? मैं कुछ समझा नहीं।
अंकुर की पिटाई मयंक के धोखे में अंकुर के पहचान के गुंडों ने ही की।
अंकुर के पहचान के गुंडों ने ही की, कैसे?
अंकुर ने अपने पहचान के गुंडों से मयंक को पिटवाने की बात पहले ही कर ली थी।
ओह।
उसकी पहचान अंकुर ने नीली गाड़ी बताकर की थी, आगे एक फ्लैग लगा हुआ ये बताया था शायद, जो अक्सर शाम 6 बजे बाद दावत रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी रहती है, क्योंकि मयंक वहाँ रोज शाम को 6 बजे के बाद जाता था अक्सर।
अच्छा, ये सब क्या तमाशा आशा?
2 दिन पहले दिशा और मैंने शाम को अंकुर से दावत रेस्टोरेंट से पालक पनीर की सब्जी मंगवाई थी, वो लेने जा रहा था तब उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई, तब अपनी गाड़ी वो गैरेज पर डालकर पास में रहने वाले अपने एक दोस्त की गाड़ी मांगकर ले गया था। उस गाड़ी का रंग भी नीला ही था और अंकुर नीली गाड़ी पर ही दावत रेस्टोरेंट चला गया था।
ओ, तो क्या अंकुर ने उनको मयंक को दिखा नहीं था?
अंकुर ने उस्ताद से बात की थी, उस्ताद ने छोकरों से सिर्फ इतना बताया होगा कि नीली गाड़ी वाले को ठोकना है, तो बस उन्होंने वहाँ पूछा होगा कि नीली गाड़ी किसकी है और नीली गाड़ी पर कौन आया था, बस हल्के अंधेरे में नीली गाड़ी उठाते अंकुर को ही देखा, उन्होंने मयंक समझकर पीट दिया उसे। वो तो अच्छा है कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई है, वरना।
तुम बता रही थी कि फिर भी उसे 2 दिन तो अस्पताल में रहना ही पड़ा। देखो आशा, तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? यही कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है।
ये तो मैंने सब देख ही लिया है।
दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि जो दूसरों के लिए कब्र खोदता है वो खुद ही उसमें दफन हो जाता है।
कैसी अपशगुनी बातें करते हैं।
और इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखते हुए ये भी कहा जा सकता है आशा कि मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
सच कहते हैं आप, तभी तो अपना मयंक बच गया और उसे पिटवाने वाले हमारा बेटा अंकुर गलत फहमी में खुद ही पिट गया बेचारा।
अब क्या कहना है तुम्हारे लाडले का, उसे अब भी अकल आई या नहीं?
अब तो वो खुद ही किसी से बदला नहीं लेने का सोचेगा कभी, क्योंकि किसी से बदला लेने का परिणाम क्या होता है ये उसे खुद ही समझ आ गया है। अब वो भी अब सजा के बदले क्षमा से किसी बुरे आदमी को सुधारने के पक्ष में ही होगा हमेशा।
गुड 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 आशा, अब वह तुम्हारा ही नहीं मेरा भी लाडला है।
अभी आपने सुना नाटक नीली गाड़ी। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है: अपर्णा सिंह, दीपा करोले, माइकल हॉजेस और पीटर जामरा।